मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 21 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान मित्र का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। इनका नाम है ममता निषाद। आप मुगल सराय उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे रायसीना संवाद एवं भारत की विदेश नीति इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज मैं जितनी भी घटनाओं के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा इत्तफाक ही है कि इनमें से किसी का भी संबंध सीधे सीधे एटलीस्ट रेडियो न्यूज से तो नहीं ही है। देखिए, मैंने जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि एटलीस्ट रेडियो न्यूज से तो नहीं ही है और यहां तक कि दूरदर्शन के न्यूज से भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ रेडियो न्यूज या सिर्फ दूरदर्शन की न्यूज या दूसरे चैनल्स की न्यूज से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी, तो दोस्तों आप बहुत गलत सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप ये भी सोच रहे हों कि चूंकि आज इसमें तो कोई घटना ऐसी है ही नहीं जो सिविल सर्विस में हमारी मदद कर सके, तो हम इसे सुने ही क्यों, अखबारों पर ही डिपेंडेंट हो जाएं, तो यह भी आप गलत करेंगे। बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, स्थानापन्न नहीं, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। इस बात का आपको बकायदे ध्यान रखना होगा और लगातार याद भी रखना होगा। आज की एक दो जो तथ्यों की मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों, देखिए इसका संबंध किस बात से है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, है ना। अब जो मेंस में सफल हुए हैं वो इंटरव्यू की तैयारी में लग गए होंगे। इंटरव्यू में जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बातचीत की जाती है, प्रश्न पूछना तो उसका एक आधार है, तो डेफिनेटली उसमें लेटेस्ट घटनाओं को सबसे ज्यादा शामिल किया जाता है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको मालूम है कि दावोस में सम्मेलन शुरू हो चुका है, कल हम लोगों ने इस पर बातें की थी। अब आपको ध्यान ये रखना होगा, खासकर जो स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कि वहां ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो उनके लिए बहुत मददगार हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर उस दावोस सम्मेलन में अभी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, जिसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उसने भारत के बारे में क्या कहा है। उसने भारत का जो 2019-20 की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है, पहले उसने 6% बताया था, उसे घटा करके 4.8% कर दिया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, हमारी भारत का हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है, एटलीस्ट अभी पिछले कुछ समय से 7% चली आ रही थी, इसके बाद उसको रिड्यूस करके 6% किया गया, अब उसको भी रिड्यूस करके 6 से 4.8% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हालत में नहीं है। और उसने उसका बकायदे रीजन बताया है कि इसके रीजन क्या है। एक तो उसने कहा कि जो हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं भारत की, वो संकट में है। आप देख रहे हैं कि बैंक लगातार फेल होते चले जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो गांव है, गांव और दूसरे जो लोग हैं, उनकी इनकम नहीं हो रही है। तो सीधी सी बात है, जब उनकी इनकम ही नहीं होगी तो फिर आर्थिक वृद्धि कैसे होगी। अब इनकम क्यों नहीं हो रही है, इसकी सीधी सी बात है कि हमारा निर्यात घट रहा है, हमारा बाजार कमजोर पड़ रहा है, हमारे यहां बेरोजगारी की स्थिति है, यह उसका रिफ्लेक्शन है। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर आप अपने उत्तर को इसके माध्यम से सामने रखेंगे तो आपकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होगी। और इसके बाद देखिए कि फिर आगे आए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है, कि भारत में जो ये वृद्धि दर कम हो रही है, इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है और विश्व में जो अभी सुस्ती दिखाई दे रही, आर्थिक सुस्ती, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भारत की धीमी गति का आर्थिक विकास भी है। यानी कि अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि दुनिया में जब आर्थिक मंदी आएगी तो भारत उससे प्रभावित होगा, बल्कि अब हम उस स्थिति पर आ गए हैं कि अगर भारत में आर्थिक मंदी दिखाई देगी तो दुनिया भी उससे प्रभावित होगी। तो दोस्तों, इस तरह की बातों पर आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही साथ देखिए कि फिर से एक मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और केवल इंटरव्यू की तैयारी वाले स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि जो प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी दावोस में ही ये बात सामने आई है। एक ऑक्सफैम संगठन है, उसने जो आंकड़े दिए हैं, दो तरह के आंकड़े हैं। पहला यह है कि भारत के जो 1% धनी लोग हैं, 1%, उनके पास गरीब जो आदमी है 70% के बराबर की संपत्ति है, मतलब 70% लोगों की जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति सिर्फ 1% व्यक्ति के पास है। धन का असमान वितरण इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ठीक इसी तरह से दुनिया के बारे में वो कह रहे हैं कि दुनिया के 2153 जो धनी व्यक्ति हैं वो निम्न आय वर्ग के जो 60% आबादी है उतनी संपत्ति उन 2153 लोगों के पास है। तो अब आप देखिए कि यहां 60% वहां 70%, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जो दुनिया की जो संपत्ति है वो कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटती चली जा रही है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन की आलोचना की जाती है उसके पीछे एक बात कही जाती है कि इससे धन का केंद्रीकरण होता जा रहा है। मित्रों, जो अगली खबर है वो ये है कि जो भारत ने मलेशिया से खाद्य तेल का आयात इनकार कर दिया है, आपने इसके बारे में पहले पढ़ा भी, हम लोगों ने बात भी की थी। तो यहां मैं एक दो तथ्य आपको बताना चाहूंगा कि भारत जो है सबसे ज्यादा, जो मलेशिया है भारत को सबसे ज्यादा पाम ऑयल और पामोलिन ऑयल भेजता था। ये दोनों खाद्य तेल हैं जिसका जिसको हम आप कह लीजिए कि खाते हैं। और हमारा जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2.5 करोड़ टन तेल, खाद्यान्न तेल, 2.5 करोड़ टन खाद्यान्न तेल। इसमें से हम 1.5 करोड़ टन खाद्यान्न तेल का आयात करते हैं, यानी कि हमारा जो अपना देशी उत्पादन है वो केवल 1 करोड़ टन का है, यानी कि हम अपने रिक्वायरमेंट का 60% इम्पोर्ट करते हैं। और दुनिया में जो खाद अब जो पाम ऑयल है उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है इंडोनेशिया। तो यह तथ्य आपके ध्यान में होना चाहिए, प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक वायरस का नाम पिछले कुछ समय से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसे अभी अपने डेली ऑडियो लेक्चर में शामिल नहीं कर पाया था क्योंकि मैं देख रहा था, वाच कर रहा था कि स्थिति कहां तक बढ़ती है। लेकिन अब यह वायरस काफी चर्चा में आ चुका है जिसका नाम है कोरोना वायरस। यह संक्रामक रोग है, मैन टू मैन फैलता है, चाइना, जापान और थाईलैंड इन देशों में फैल चुका है। इसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है। इसके जो लक्षण होते हैं, तेज बुखार आएगा, एकदम थकान महसूस होने लगेगी, तेज सिरदर्द होने लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, भूख बिल्कुल कम हो जाएगी, डायरिया होने लगेगा। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। बस इस वायरस का नाम आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, आपके लिए पर्याप्त होगा। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है रायसीना संवाद। देखिए, जो रायसीना नाम है, ये रायसीना क्या है? बेसिकली रायसीना पहाड़ी है जहां हमारा आज पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट है, जहां हमारे राष्ट्रपति जी रहते हैं, राष्ट्रपति भवन है, जहां हमारा आप कह लीजिए कि प्रशासन का केंद्रीय, जैसे वित्त मंत्रालय है, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, गृह मंत्रालय है, ना, जिसे आप साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ये सब रायसीना हिल्स पर ही बने हुए हैं। तो प्रतीकात्मक नाम चुना गया रायसीना संवाद, यानी कि भारत में होने वाला संवाद। और ये जो संवाद है ये मल्टीलेटरल है, यानी कि बहुपक्षीय है। इसमें दुनिया के बहुत से देश आते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी आते हैं, एकेडमिशियन, और आने के बाद फिर वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। आप यूं कह लीजिए कि ये दावोस का एक छोटा सा रूप है। और इसका जो पैटर्न लिया गया है, सिंगापुर में भी इसी तरह का एक संवाद होता है, उसका नाम है सांग्रीला डायलॉग। उसी के पैटर्न पर भारत में 2016 में इसे शुरू किया गया है। दो संस्थाएं इसे मिलकर शुरू करती हैं, एक को संस्था नहीं कहना चाहिए, एक संस्था का नाम है ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन, ये थिंक टैंक है, ये प्राइवेट थिंक टैंक है, और जो दूसरा है हमारा विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोनों मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें दुनिया के बहुत से देश आते हैं और वो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें रखते हैं। सच पूछिए तो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स सम्मेलन है, भू राजनीतिक और भू आर्थिक। इस बार का जो सम्मेलन हुआ है मित्रों, उसको लेकर के मैं खासकर दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस सम्मेलन में, क्योंकि ये सम्मेलन बहुत आप कह लीजिए कि एक संघर्ष के दौर या संकट के दौर का सम्मेलन था, अमेरिका ईरान के तनाव को आप देख रहे हैं, राइट, और फिर भारत ईरान के संबंधों को भी आप देख रहे हैं, उधर अमेरिका और चीन के तनाव को आप देख रहे हैं, रूस और अमेरिका में भी कहीं ना कहीं तनाव है ना, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में अलग तरह का संकट है, चीन अपने पांव पसारते चला जा रहा है प्रशांत और आपके इधर महासागर में, हिंद महासागर में। ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने विदेश नीति का निर्धारण कैसे करे, किसका पक्ष ले। इस संवाद में, इस सम्मेलन में भारत ने अपनी विदेश नीति को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है और यह भारत की बहुत बड़ी सफलता है। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि भारत की जो वर्तमान विदेश नीति है वो किस तरीके की है, इस रायसीना संवाद से हमारी समझ में आती है। पहली बात देखिए, पहली फर्स्ट पॉइंट कि आप देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के जो संकट हैं और फिर उसको लेकर के कैसे भारत और ईरान के संबंधों में थोड़ी सी शिथिलता आई, क्योंकि हम ईरान से बहुत ज्यादा ऑयल मंगाते थे, पेट्रोलियम पदार्थ, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से हमने मंगाना कम कर दिया, फिर हमारा वहां चाबहार बंदरगाह है। भारत के लिए बहुत संकट का दौर था और उसमें अभी जब ईरान के जो मंत्री थे उन्होंने जब यहां भाग लेने के लिए रायसीना में आए और उनसे बातचीत हुई तो भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है भारत उसके लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि हमारे चाबहार बंदरगाह को लेकर के संबंधों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा और भारत के लिए भी अपने आप में ये जरूरी था। और यहां तक कि चारबाग के संचालन और उसे विशेष आर्थिक जोन घोषित करने के लिए ईरान ने जो अपना आश्वासन दिया भारत ने उसके प्रति आभार व्यक्त किया। इसका मतलब है कि हमने ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंधों का इजहार किया है। अब एक घटना है, इसके माध्यम से क्या हमारी विदेश नीति का लक्षण स्पष्ट होता है। सीधी सी बात है कि इसके जरिए भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत में इतनी क्षमता है कि वो विरोधी देशों के साथ भी अपने संबंधों में संतुलन कायम रख सकता है। देखिए, विरोधी देश हो गए ना अमेरिका, ईरान, और हम ईरान के साथ भी अपने संबंध बनाए रख रहे हैं और अमेरिका के साथ भी अपने संबंध बनाए रख रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली शायद फरवरी में जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो भारत यात्रा पर आए। तो ये पहली बात, यानी कि भारत संबंधों में संतुलन कायम रखेगा। दूसरी बात है कि भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, कि भारत दुनिया में अस्थिरता पैदा करने वाला देश नहीं है, बल्कि इसकी जो भूमिका है वो स्थायित्व तो पैदा करने की है। और इसके बिल्कुल प्रमाण हैं, उन्होंने प्रमाण भी दिए कि आप देखिए कि हमारे विदेश नीति के आधार पर जो हमारा देश है, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीनी जैसे देशों के साथ बकायदे बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया कि हमारी अपनी जो विदेश नीति है उसका संचालन बकायदे अन्य देशों के हितों की पूर्ति नहीं करेगा, वो अपने देश के हितों को देखेगा। ऐसा नहीं कि हम आपके हिसाब से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करें। दोस्तों देखिए, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यह है कि आजादी के बाद से हमारी जो विदेश नीति रही है, अगर आप विदेश नीति के इतिहास को देखेंगे तो शुरू में तो हमारी विदेश नीति प्रो रशिया रही, रशिया की तरफ झुकाव था। बाद में रशिया के कमजोर पड़ जाने और बिखर जाने के बाद जो हमारी विदेश नीति है वो प्रो अमेरिका हो गई और अभी भी हम कहीं न कहीं उस नीति पर चल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम संतुलन की स्थिति में आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम आप सीधे सीधे कह सकें कि भारत की जो विदेश नीति है वो प्रो अमेरिका है। और इसका भी प्रमाण यहां रायसीना संवाद में मिला, जबकि रशिया ने बकायदे ये कहा कि जो अमेरिका है वो भारत का इस्तेमाल करना चाह रहा है। उसने एक बहुत उल्टी सी बात कही थी, वो ये कहा था, अमेरिका ने अभी इंडो पैसिफिक अवधारणा दिया, इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक। रशिया ने कहा कि नहीं, ये इंडो पैसिफिक नहीं होना चाहिए, ये एशिया पैसिफिक होना चाहिए। इंडो मतलब इंडिया से जुड़ गया, तो इंडिया का नाम क्यों हो, ये एशिया का नाम होना चाहिए। तो रशिया ने ये बात कही। अब आप देखिए कि अब अमेरिका के विरुद्ध ये बात कह रहा है, लेकिन भारत को रशिया से भी संबंध बनाए रखना है और रशिया भारत के यहां विरुद्ध बात कह रहा है। इसको भी इस संवाद के दौरान बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया और साफ साफ ये कहा गया कि भारत जो भी अपने फैसले करेगा वो अपने हिसाब से करेगा। हाँ, हम जो फैसले करते हैं उसके बारे में दुनिया को अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन भारत को भी ये अधिकार है कि उनकी राय के बारे में अपनी राय रखे। और कुल मिलाकर के ये कि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति में रूस, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को विशेष प्राथमिकता देगा। ये रायसीना संवाद से उभरते हुए हमारी जो विदेश नीति के का जो नया स्वरूप है वह स्पष्ट होता है। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में। बस इतना ही मैं चाहूंगा कि आप इस ये पॉइंट्स नोट कर लें ताकि विदेश नीति से संबंधित जो आपका टॉपिक है वो अपडेट हो जाए। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: ज्योत्सना भारती, सपना कुशवाहा, आशु जायसवाल, रजा मुजामिल शफी अलीगढ़ से, अनामिका विमल और प्रज्ञा गोस्वामी। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।